ओम शांति। एक बार सभी बोलेंगे ओम शांति। काफी दूर दूर आप लोग बैठ गए हैं, जो बहुत पीछे बैठे हैं अगर थोड़ा आगे आ जाएं तो अच्छा लगेगा, रोरियान करने में अच्छा लगता है। एक एक चेयर छोड़ करके बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाएं तो अच्छा लगता है बातचीत करने में। बाबा कहते हैं हम सब योगी तो आत्मा है, हम सब बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं। जब से हम बाबा के बने हैं निरंतर रूप से हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग भी करते हैं, ज्ञान की धारणा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। ये सब हमारी तपस्या के अंग हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि साधना हम कर तो रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके अकॉर्डिंग हमारी जितनी स्व उन्नति होनी चाहिए वो स्व उन्नति हमारी हो नहीं रही है, हमारा आत्म परिवर्तन हो नहीं रहा है। कई बार जो लोग हमें देखते हैं उन्हें भी ऐसा महसूस होता है, और कई बार वो बोल भी देते हैं कि भाई आप कहते तो हो कि आप योगी हो, बाबा के बच्चे हो, साधक हो, लेकिन आपके जीवन से ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि 10 साल ज्ञान में हो गए, 20 साल ज्ञान में हो गए, कईयों को इससे ज्यादा भी ज्ञान में हो गया, लेकिन एक संतोषजनक परिवर्तन जो हमारे जीवन में आना चाहिए और दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। कारण क्या है इसका? ऐसा भी नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम योग बहुत अच्छा करते हैं, जब भी मौका मिलता है सेवा भी करते हैं, यथाशक्ति यथा योग्य हम दान पुण्य भी करते हैं, उसके बावजूद भी परिवर्तन जीवन में नजर क्यों नहीं आता है? जीवन में विघ्न बाधाएं बहुत रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, रोग रहता है, हम अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। 10 साल पहले भी उतना ही क्रोध था और आज भी उतना ही क्रोध है। 10 साल पहले भी हमारे पास, हमारे मन में धन के प्रति वो आकर्षण था, आज भी है। दुनिया के प्रति, पुरानी दुनिया और देह के प्रति आकर्षण था, आज भी है। कारण क्या है? बाबा कहते हैं हम अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं लीक कर रहे हैं। आज का विषय है ना, लीकेजेस इन ब्राह्मिन लाइफ। लीकेज का मतलब आप सब समझते हैं ना, एक मटका है उसमें पानी भरा हुआ है, एक छोटा सा सुराख कर दीजिए, क्या होगा? धीरे धीरे वो मटका खाली हो जाएगा। अभी क्या करिए, उस मटके को उठा करके एक नलके के नीचे रख दीजिए, पानी उसमें खोल दीजिए, ऊपर से पानी भरता रहेगा नीचे से मटका, और अगर उसमें 2, 4, 10, 20 छेद कर दिए जाएं तो और तेजी से मटका खाली होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक तरफ से हम पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरी तरफ से हम अपनी उन संचित शक्तियों को नष्ट करते रहते हैं। एक योगी को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आत्मा अपनी शक्तियों को कहां कहां खर्च कर रही है, वेस्ट कर रही है, लीक कर रही है। यदि उन लीकेजेस का हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे, और यदि रोक नहीं पाएंगे तो हमारा आत्म परिवर्तन नहीं होगा। ये आत्मबल जो हम जमा करते हैं योग से, सेवा से, दूसरों को सुख दे करके, ये आत्मबल ही हमारा परिवर्तन करता है। परंतु यदि वो आत्मबल हमारा नष्ट होता रहे, छोटी छोटी बातों में, बहुत साधारण सी बातों में, तो आत्मा कभी भी भरपूर नहीं हो पाती है, उसका आत्म परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो आज के इस चर्चा में हम अपने उन छोटे छोटे लीकेजेस को जानने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे उन कमियों को भरने की कोशिश करें, वो जो छेद है ना उनको भरने की कोशिश करें। फिर हमें लगेगा कि हमारा आत्म परिवर्तन तेज हो रहा है, अपने आप में एक आत्म संतोष की अनुभूति होगी, संतुष्टता नजर आएगी, लगेगा कि हाँ अब ये एक अच्छा योगी जीवन है, भरपूरता का जीवन दूसरों को भी नजर आएगा। हमें क्या लगता है, हम जो कुछ कर रहे हैं सब का सब जमा हो रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक छोटा हिस्सा जमा होता है, एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से किसको समझते हैं, मान लीजिए आपने बाबा के घर में 100 रुपया दान किया। जब आपने 100 रुपया दान किया तो बाबा के अकाउंट में कितना जमा कर दिया, आपके भाग्य में कितना जमा हुआ, 100 रुपया, पूरा 100% हमारे खाते में वो जमा हो जाता है। लेकिन यदि मन में ये ख्याल आया कि मैंने बाबा को दिया, एक सूक्ष्म अहंकार, एक देने का भान, एक भाव मन में आया, 25% वहां हमारा माइनस हो जाता है। ये जो कर्मों की गति हम कहते हैं ना, केवल हाथों से करना कर्म नहीं होता है, सूक्ष्म में जो हम सोचते हैं, मुख से जो बोलते हैं, ये भी कर्म है। और कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है, ये भी एक साइंस है, इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की गहराई में जाओ, हम ज्ञान की गहराई में जाते नहीं है। केवल इतना बोल देना कि जो करोगे वो मिलेगा, कर्मों की गति सीधी है, ये तो बहुत आम बात है, परंतु उनको, उन विधियों को समझना, उन बारीकियों को समझना एक योगी के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मन में एक अहंकार आया कि हमने बाबा को दिया, 25% हमारा माइनस, कितना बच गया, 75, दिया कितना था, 100। हम भगवान को कुछ दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, हमारे पास इतना है कि हम भगवान को दे पाए, उसका दिया सब कुछ हमारे पास है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बाबा को दिया, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते। तो अगर मन में ये अहंकार आया 25% कट, और यदि हमने उसकी चर्चा किसी से कर दी, 2-4 लोगों को सुनाया, आपको पता है मैंने आज यज्ञ में 100 रुपया दिया, दीदी को आज मैंने 100 रुपया, नया साल था तो मैंने 100 रुपया दिया ताकि दीदी अच्छे से सेलिब्रेट करना, और 25% कट, कितना बचा, सोचा 25 कट, वर्णन कर दिया 25% और कट हो गया। और यदि कुछ उसके बदले अपेक्षा मन में रख ली, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे शान मिलना चाहिए, दीदी मेरा नाम स्टेज पर लेना चाहिए, मैंने 100 रुपया दिया तो और 25% कट, दिया था 100, बच कितना गया, 25 रुपया बचा। हम अपनी शक्तियों को ऐसे ही लीक करते हैं, वेस्ट करते हैं। दिया तब 100 रुपया, हमने क्या सोचा, मेरा 100 रुपया बाबा के घर में जमा है, जमा केवल 25 रुपया है। हम करते हैं, परंतु उतना जमा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की वो गहरी समझ हमारे पास नहीं है। बाबा कहते हैं, दान वो सफल होता है जो दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं को भी। आध्यात्मिक जीवन में गुप्त का बहुत महत्व है। गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त रहने का। इंसान की क्या प्रवृत्ति है, वो एक्सपोज होना चाहता है, उसको एक्सपोजर चाहिए। लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे नाम की चर्चा करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, वो भी मिलता है। लोग जान जाते हैं, लोग हमारी प्रशंसा भी करते हैं, वाहवाही भी करते हैं, लेकिन उसके बदले में भगवान से जो आने वाले जन्मों में मिलना चाहिए, या इस जीवन में जो सुख और शांति संतोष, वो नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी दान का वर्णन नहीं करना चाहिए। हम सब योगी हैं, योग भी करते हैं, योग के पीछे भी हमारी क्या मनसा रहती है, दो मनसा रहती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक मुझे योग करना है, अपने पाप नष्ट करने हैं, किसी को दिखाना नहीं है, कोई देखे ना देखे मुझे बस योग करना है, दिल का प्यार। और कुछ लोग योग क्यों करते हैं, लोग देखें, अरे ये तो बहुत योगी है, ये बहुत योग करता है, बहुत पुरुषार्थी है। ऐसा योग कभी फलीभूत नहीं होता है। इसलिए योग भी यदि दिखावे के लिए किया जाए, मान सान और प्रशंसा के लिए किया जाए, तो थोड़े समय के लिए वो मान सान मिल तो जाता है, लेकिन उससे हमारा आत्म कल्याण कभी नहीं होगा, हमारा आत्म परिवर्तन कभी नहीं होगा। गुप्त योग से हम जितना संचित कर पाते हैं, दिखावे के योग से उतना संचित नहीं कर पाते हैं। हम इन छोटी छोटी चीजों में अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, भोजन, अगर हमारा भोजन शुद्ध नहीं है तो भी हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। 10-20 वर्षों की जमा की हुई शक्ति तपस्या की, अगर थोड़े दिन हमारा भोजन अपवित्र हो जाए, वो सारी शक्ति ड्रेन आउट हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हारा भोजन शुद्ध है तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ तो भोजन ही करवा देता है, इतनी शक्ति है भोजन में। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से हम एक कहावत सुनते आए हैं, जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह का अन्न हम खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, यानी मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। अब विचारों की भी कैटेगरी है, तमो प्रधान विचार और सतो प्रधान। सहज भाषा में बोले तो अच्छे विचार बुरे विचार, पॉजिटिव संकल्प और निगेटिव संकल्प। पॉजिटिव संकल्पों की गति बहुत धीमी होती है, निगेटिव संकल्पों की गति बहुत तेज होती है। पॉजिटिव संकल्पों से हमारे आत्मा की एनर्जी बढ़ती है और निगेटिव संकल्पों से आत्मा की एनर्जी नष्ट होती है। हमने सुबह अमृत बेला बहुत अच्छा योग किया, शाम को भी अच्छा योग किया, लेकिन भोजन की थोड़ी सी अशुद्धि हमने कर दी, सारे दिन का योग का चार्ट खत्म, जो कुछ भी संचित किया वो खत्म। हमको क्या लग रहा है, हमने आज बहुत जमा किया, पिछले एक हफ्ते से हम भट्टी में हैं, बहुत जमा हुआ, लेकिन भट्टी से निकले घर में आए भोजन की अशुद्धि, बाबा कहते हैं 50% से भी ज्यादा खत्म। इसीलिए योगी के चार स्तंभों में से एक स्तंभ भोजन है। भोजन किसने बनाया, किस मनोवृत्ति में स्थित होकर के बनाया, भोजन आया किस विधि से है, भोजन को हमने किस मानसिकता से खाया, ये सब भोजन की शुद्धि में काउंट होता है। केवल लहसुन प्याज ना खाना, मांस मदिरा, ये तो बाबा के बच्चे, ये तो बहुत आम धारणा है, हम सब आते ही पहले दिन से फॉलो करने लग जाते हैं। परंतु भोजन बनाया किसने है, पवित्र आत्मा है वो अपवित्र है, भोजन का जो अन्न है वो कहां से आया है, किस विधि से अन्न आया है, उसका भी आत्मा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पाप के धन से अर्जित किया हुआ अन्न न तो खुद खाएं न अपने बच्चों को खाने दें, उठा के डस्टबिन में डाल दें, ये सबसे अच्छा। कभी भी गलत ढंग से प्राप्त धन से अन्न अपने घर में न लाएं, न खाएं, न किसी को खाने दें, उससे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, आत्मा धीरे धीरे निर्बल होगी, मानसिक रोग बढ़ेंगे। आज संसार में यही तो हो रहा है, हम एक दूसरे का गला काट करके धन इकट्ठा करते हैं, भाई भाई को दुख देकर धन इकट्ठा करता है, डॉक्टर पेशेंट को दुख देकर के धन इकट्ठा करता है, वकील अपने क्लाइंट को दुख देकर के धन इकट्ठा करता है, और फिर उससे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी परवरिश करते हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां, मानसिक रोग, बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मन शांत नहीं रहता है। अशुद्ध अन्न खा करके मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है, और योग के लिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। मुरली में आपने कई बार नौलखे हार की कहानी सुनी होगी, रानी का नौलखा हार खो गया, सुना है, बाबा सुनाते हैं ना, हाथ खड़ा करें, किसने सुना है, ठंडी है, थोड़े जोर से हाथ खड़े करें, थोड़े हिल जाएंगे तो चेतन रहेंगे। तो नौलखे हार की बाबा कहानी सुनाते हैं कि रानी का नौलखा हार खो गया, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, नहीं मिला। बाद में कुल गुरु के पास गई, पूछा मेरा हार खो गया है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बता दीजिए मेरा हार किसने चोरी किया। तो कुल गुरु ने निकाल करके वो हार रानी को दिया, कहा रानी ये मैंने हार मैंने चोरी किया था। रानी को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप तो संत हैं, महात्मा हैं, त्यागी और वैरागी हैं, आपको इससे क्या लेना देना, आपने ये हार क्यों चोरी की। तब उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा, पहले ये पता करो कि कल जो भंडारे में अन्न बना था उसका अनाज कहां से आया था, जो भोजन बना था उसका अन्न कहां से आया था। पता किया तो पता पड़ा कि एक चोर ने चोरी किया, सिपाहियों ने उसको पकड़ा, उससे वो अनाज छीना और छीन कर ला करके राजकोष में जमा कर दिया। वो चोरी वाला अनाज उस दिन बना था, जिसको सबने खाया, वो साधु ने भी खाया, जैसे ही खाया, चूंकि वो चोरी से प्राप्त किया हुआ धन था, उसमें चोरी के वाइब्रेशंस भरे थे। संत की बुद्धि तो बहुत क्लीन होती है ना, बहुत पवित्र, तो पवित्र चीज पर तो बहुत जल्दी असर पड़ेगा। खाते ही उनके मन में चोरी का विचार आया, उन्होंने रानी का हार उठा लिया। तो किस विधि से धन को उपार्जित किया गया है, इसका भी एक गहरा असर पड़ता है। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है तो मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, मन में तरह तरह के गलत विचार चलेंगे, तमो प्रधानता के विचार चलेंगे, वो हमें कभी भी योगी बनने नहीं देंगे, हमारी आत्मशक्ति को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे और हम कमजोर होते रहेंगे। तो ये भोजन भी एक बहुत बड़ा लीकेज है। तीसरा, बीती बातों का चिंतन करना, जो बात बीत गया, पास्ट मेमोरीज, बार बार उनका चिंतन करना। हरेक के जीवन से उसका पास्ट जुड़ा हुआ है। हरेक के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। इंसान की फितरत क्या है, अच्छी बातों को भूल जाता है और बुरी बातों को बार बार याद करता रहता है। जब भी हम खाली वक्त में होते हैं, हमें वो पुरानी बातें, दुखदाई बातें याद आती रहती हैं। कुछ हमारे साथ भविष्य भूतकाल में गलत हो गया हो, कुछ अनिष्ट हो गया हो, हमने कुछ गलत कर दिया हो, वो चीजें याद कर करके आत्मा दुखी होती है। और जिस भी संकल्प से आत्मा को दुख मिलता है, आत्मा की शक्ति उससे नष्ट होती है। जो शक्ति हमने संचित की है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बीती ताही विसार दे, जो बीत गया सो बीत गया। बीती बातों का चिंतन मत करो, ये आत्मा को निर्बल करेगा। अब बाबा हर बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों पर भरोसा है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, ये बड़े बुद्धिमान हैं, चिंतन करके इसके पीछे का मर्म वो निकाल लेंगे। तो बाबा सीधे प्लेन शब्दों में जो गुह्य बातें हैं वो बता देता है, उसके पीछे की जो बात है, उसके पीछे का जो मर्म है हमको निकालना है। रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सब मोबाइल अपना बंद कर लें, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। तो पीछे का मर्म हमको समझना है। बीती बातों का जितना अधिक चिंतन करेंगे, उतना ही हमारी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए बीती बातों को भूलते जाएं, परंतु बीती बातों को भूलना इतना सहज नहीं है। क्या अनुभव कहता है आपका, अनुभव क्या कहता है, बीती बातों को भूलना सहज है, नहीं सहज है ना। जितना हम बीती बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, वो बातें उतना और ज्यादा याद आती हैं। डिपेंड करता है कि इस बात ने मुझे कितना गहराई से चोट पहुंचाया है, कितनी गहराई से हमको दुख दिया है। ये बीती बातें आत्मा को मानसिक पीड़ा देते हैं, बेचैन करते हैं। चाहे हमसे कोई पाप हो गया हो, भूल हो गई हो, कुछ भी, हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं भूलना जरूरी है, भूलोगे नहीं तो योगी बन नहीं पाओगे। योग में वो बातें याद आएंगी। कैसे भूलें इसको, कैसे भूलें? बीती बातों को भूलने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? अगर हम ये सोचें कि मुझे नहीं याद करना है, दृढ़ता अपनाएंगे, हठ करेंगे, तो और ज्यादा याद आएंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे एक ऐसा मंत्र दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। गुरुदेव उसको मंत्र देते हैं, कहते हैं बेटा तू इसका जाप कर, तेरा कल्याण होगा। पर एक शर्त है, जब भी तू इसको जाप करने बैठेगा, बंदर को मत याद करना। अगर बंदर को याद किया तो तेरा जाप निष्फल, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब वो शिष्य जब भी जप करने बैठेगा, सबसे पहले कौन याद आएगा? आएगा ना, क्योंकि मना किया था। इसलिए नहीं मना करते थे गुरुजी तो वो याद नहीं आता था, मना कर दिया तो याद। बीती बातों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये बीती बातें न तो भूलती हैं और न हमें चैन से रहने देती हैं, इंसान का जीना दुभर कर देती हैं। एक मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार एक आम इंसान अपनी दिनचर्या का या अपने जीवन का 80% समय बीती बातों के चिंतन में गुजारता है। सोचिए, अगर हम 80% अपना टाइम और एनर्जी बीती बातों में कमा रहे हैं, उसके चिंतन में, तो हम अपनी कितनी आत्मशक्ति को रोज नष्ट करते हैं। इसलिए इनको भूलना जरूरी है। ये ना हमें चैन से रहने देते हैं और ना भूलते हैं। बाबा कहते हैं इनको भूलने का सबसे सहज तरीका है अपने को आत्मा निश्चय करना। जोर जबरदस्ती से ये होगा नहीं, अपने को आत्मा निश्चय करो। अब इसके पीछे विज्ञान क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हमारी जितनी भी पास्ट मेमोरीज हैं वो आत्मा से जुड़ी हैं कि शरीर से। शरीर से जुड़ी है ना, आत्मा से नहीं जुड़ी हैं। आप शरीर को भूलते जाओ, बीती बातें अपने आप भूलती जाएंगी। कितना सिंपल सिंपल बाबा ने पुरुषार्थ की विधियां बताई है ना, छोटे छोटे टेक्निक्स। अगर हम उन टेक्निक्स पर ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे योगी बन सकते हैं, बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं। हम खुद के लिए भी और समाज के लिए भी एक बहुत उपयोगी तत्व बन सकते हैं। परंतु ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं रहती हैं क्योंकि हम इनका चिंतन नहीं करते हैं। हमने अपने जीवन में कोई ठोस लक्ष्य नहीं बनाया है कि मुझे बनना क्या है, मुझे योगी बनना है कि बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक अच्छा तपस्वी बनना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, धन कमाना है कि पुण्य कमाना है। समय की समीपता का एहसास नहीं है। हम ज्ञान का चिंतन करें, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। तो अपने को आत्मा समझने से देह से जुड़ी हुई जितनी भी दुखद घटनाएं हैं वो धीरे धीरे भूलने लगती है। बहुत पहले मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आए थे, बाबा के बच्चे बने, पर वो बाबा का बच्चा बनने से पहले वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कहते हैं ना, जिसको सुपारी लेकर के हत्या करना। वो अपने एरिया के बहुत बड़े दादा थे। उन्होंने मुझे जो बताया, अब व्यक्ति सच तो नहीं बताता है ना हर बार, मुझे जो बताया कि वो अपने लाइफ में, लाइफ क्या मैंने, उनकी उम्र उस समय बहुत ज्यादा तो नहीं थी, 50 साल की रही होगी, 25 से 30 लोगों की हत्या तो उन्होंने खुद की हुई है, और कितनों की करवाई होगी वो अलग, कितनों को दुख दिया होगा वो अलग। ये बीती बातें कैसे भूत की तरह हमारा पीछा करती हैं, हमें चैन से नहीं रहने देती हैं। मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं। वो जब ज्ञान में आए तो वो एक अनुभव बार बार सुनाते थे मेरे को, जब भी मिलते थे, यहां मिले या मैं सेंटरपुर जाऊं, बताते थे कि भाई साहब अचानक मैं नींद से उठ जाता हूं, एकदम मुझे घबराहट होती है, डर लगता है, एकदम मैं पसीने से तर बतर कांपने लगता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा लगता है ना कि मेरे चारों तरफ यमदूत खड़े हों और मुझे नोच रहे हों, खींच रहे हों। कोई ऐसा लगता है कि मैं सोने जाता हूं तो मुझे आधी नींद में चला जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं न सो पा रहा हूं, मैं न जग पा रहा हूं, न पूरी तरह सोया हूं और न पूरी तरह से मैं जगा हूं। नींद में ऐसा लगता है कि मुझे कोई सजा दे रहा हो। एक मन को बहुत तकलीफ सी होती है, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका कारण तो हम सबको पता है। अब उस व्यक्ति को हम लोग बोल तो सकते नहीं कि भाई ये आपका पाप जो है आपका पीछा कर रहा है। तो वो जो पाप है ना, इंसान को चैन से नहीं रहने देता है। और जितना अधिक व्यक्ति उसके बारे में चिंतन करता है, दुख में जाता है, उसकी शक्ति नष्ट होती है। पाकिस्तान की एक माता, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे और मुसलमान लोग भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। पर उस समय क्या हो रहा था, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। एक तरह से दंगा हो गया था। एक माता जो पाकिस्तान की तरफ रहती थी, हिंदू थी, उसको लगा कि मुझे भारत में चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, हमें चैन से नहीं रहने देंगे। उसने सोचा रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके हम भारत की तरफ भाग जाएंगे। जैसे उनको पता पड़ा, उन्होंने उसके पति को तो पहले ही मार दिया था, दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक दो दो साल के गोद में खेलने लायक बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को जैसे ही रात्रि को लेकर के वो निकलने का प्रयास किया, मुसलमान लोगों को पहले ही पता पड़ गया था, चारों तरफ से उसके घर को घेर करके और उन लोगों ने उसको आग लगा दिया। वो चारों तरफ से वो आग जो है वो घर को जलाने लगा और नीचे का जो फर्श था वो सीमेंट का था, धीरे धीरे वो फर्श गर्म होने लगा। गर्म होते होते वो इतना अधिक गर्म हो गया कि अब वो जो बहन थी उसके सहन शक्ति से वो बाहर हो गया। और कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों जब सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो आदमी के विवेक को वो हर लेता है। समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति कर क्या रहा है। वो माता अपने दोनों बच्चों को जमीन पर रखती है, दोनों बच्चों के ऊपर खड़ी हो जाती है, बच्चे दोनों जल करके मर जाते हैं, माता बच जाती है, जैसे तैसे भाग करके भारत में आ जाती है। आने के बाद ज्ञान में आती है, उसको बाबा का ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान में भी वो ठीक से चल नहीं पाती है। उसके मन में सदैव एक ही दुख भरा रहता है, मैंने अपने बच्चों को मारा है। है ना, घटनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की घटनाएं हर एक के जीवन में। तो कई बार ऐसे जो तकलीफ है ना, आत्मा को चैन से नहीं रहने देते हैं। और बाबा कहते हैं कि इन घटनाओं को भूलना बहुत जरूरी है यदि हम योगी बनना चाहते हैं तो, यदि हम अपना आत्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो। और उसका सबसे सरल और सहज एकमात्र तरीका है, अपने देह को भूलते जाओ। घटनाओं को भूलने की अब कोशिश नहीं करना, घटनाओं को भूलने की कोशिश या प्रयास नहीं करना है, अपने देह को भूलते जाना है। घटनाएं अब आपे ही भूलती जाएंगी। हमारा 80% टाइम और एनर्जी बचेगा जो हमारे आत्म परिवर्तन में काम आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे ही भविष्य की चिंता, कईयों को भविष्य की चिंता बहुत रहती है, उनका भविष्य उनको दुखी किए रहता है। कल को मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कल को मेरे बच्चे मेरा साथ ना छोड़ दें, कल को मेरा जो धन है सरकार ना ले जाए। वो इत्र वाला आजकल कुछ चल रहा है ना, इत्र वाला कोई व्यापारी, उसका कितना पैसा सरकार ने ले लिया ना, अब ले लिया ना वो चैन से सोएगा बेचारा। जब तक नहीं लिया था रोज उसको नींद नहीं आती होगी ये सोच सोच करके कहीं सरकार ले ना ले, पकड़ में ना आ जाए, सीबीआई रेड ना मार दे। अब मार दिया, लेके गई, अब वो निश्चिंत सोएगा, भाई नहीं कुछ क्या करेगा। तो ये भविष्य की चिंता ये भी बहुत लोगों को परेशान करती है। बाबा कहते हैं भविष्य के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना है। हर एक के पास अपने अपने भविष्य के चिंता का कारण है। एक युवा क्या सोचता है, इतना हार्ड कंपटीशन है, जॉब्स है नहीं, पढ़ रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, माँ बाप खर्च कर रहे हैं, कल को अगर मैं अपने करियर में सेट नहीं हो पाया तो, मुझे जॉब ना मिला तो। आजकल किसी भी युवा से बात करिए वो एकदम स्ट्रेस में है। एक समय में कहा जाता था कि विद्यार्थी जीवन गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, सुनहरा। आज सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसी में है। हम लोग बाहर जाते हैं प्रोग्राम्स में, इधर उधर भट्टियों में, अपने बाबा के युवा बच्चे भी मिलते हैं, कुमार कुमारी, परेशान रहते हैं अपने भविष्य को लेकर के। एक बुजुर्ग माता पिता ये सोचते हैं कि कल को मेरे बच्चे मेरा साथ न छोड़ दें, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। एक व्यापारी सोचता है कल को मेरे व्यापार में घाटा ना हो जाए। हर एक का भविष्य उसके लिए चिंता का कारण बना हुआ है। बाबा कहते हैं एक योगी के लिए उसका भविष्य कभी भी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। और जिसका भविष्य बाबा के हाथ में हो उसको कोई परेशानी होगी? उसका भविष्य कभी खराब हो सकता है? सबसे सुंदर भविष्य उसी का रहता है। बस निश्चय की बात है। हम बाबा पर भरोसा करके तो देखें, हमारे भविष्य का निर्माण, हमारे भाग्य का विधाता भगवान है। जो होगा अच्छा ही होगा, ये पूर्ण विश्वास है। हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है। हम अपने कल का निर्माता, कल का निर्माण आज करते हैं। आज अगर हम अच्छा करते हैं, आज दूसरों को सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कल हमारा निश्चित अच्छा होगा। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भविष्य तो उनका बुरा होता है ना, जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते। हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो भविष्य की चिंता भी आत्मा को चैन से नहीं रहने देता, हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। ऐसी तमाम बातें हैं, एक लंबी लिस्ट है लीकेजेस की, जहां से आत्मा रोज अपनी शक्तियों को नष्ट करती रहती है। उनकी एक लिस्ट बनानी है और उन पर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, उनको रोकने की कोशिश करनी है। 8:15 बजे आपका क्लास पूरा करना है, इसलिए उन सारी बातों की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। आप सब अपनी लिस्ट खुद बनाएं। दोपहर में आपके पास बहुत समय होता है ना, 1 से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक रेस्ट रहता है। आधा घंटा खाने में समय लगता है क्योंकि मौन में है, गप मारते मारते तो खाएंगे नहीं। आधा घंटा, 1.5 घंटा चलो हम रेस्ट भी कर लेते हैं तो भी तो हमारे पास 1 घंटा समय बचता है ना। 1-1.5 घंटा समय बैठ करके कॉपी पेंसिल ले करके लिखें, हमारे जीवन में कौन कौन से लीकेजेस हैं जिनको रोकना है। आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट बाहर आएगी। और एक एक के लिए पुरुषार्थ करना शुरू करें, प्लान बनाएं, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, जो जैसी कमजोरी है, आप देखेंगे कि जीवन बेहतर बनता जाएगा, जीवन में खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, ये जीवन बहुत अच्छा लगेगा। आजकल हम देखते हैं कि बीकेस लोग भी अपने जीवन से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जहां भी जाओ, अभी मैं 2 दिन पहले उड़ीसा से आया हूँ, 1 हफ्ते का वहां प्रोग्राम था, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भट्टियों का प्रोग्राम था। लोग मिलते हैं तो बाबा के बच्चे भी दुखी हैं, ऐसा ऐसा दुख सुनाते हैं। हम संतुष्ट नहीं है अपने आप से। दुनिया की बात तो छोड़ दें, जिनको भगवान मिला है, भगवान का ज्ञान मिला है, वो भी दुखी हैं। अपनी शक्तियों को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी शक्तियों को छोटी छोटी बातों में नष्ट कर रहे हैं। उनको बंद करें। छोटे छोटे पाप जो हमसे रोज जाने अनजाने में हो जाते हैं, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, श्रीमत की अवज्ञा करके, ये सब हमको कमजोर करते हैं। हमने दिन में भी आपको उदाहरण दिया था, अभी भी बता रहे हैं। योग चल रहा है, बीच में मोबाइल बजा, सबका कनेक्शन बाबा से कट हो गया, आत्मा की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। हमारी शक्ति तुरंत उसी समय कम हो गई, हम निमित्त बन गए 100-200 लोगों का ध्यान भंग करने के। ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, बाबा की श्रीमत है, योग करना है, सब योग कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, 2 मिनट रुक करके योग करने में क्या जाता है? नहीं, 100 लोगों का ध्यान भंग हो रहा है, आपको चलते देख करके उनका टेंशन जा रहा है, श्रीमत की अवज्ञा। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए नियम क्या है? अमृत वेले उठना है। हम इधर उधर जाते हैं, 6 बजे सो करके उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, लोग देखने वाले कहते हैं, अरे ये तो कहते हैं हम लोग अमृत वेला उठते हैं, ये कोई दिनचर्या है इनकी। हमने डिसर्विस की, यज्ञ की बदनामी करवाई, श्रीमत की अवज्ञा। ये छोटे छोटे पाप हैं जो आत्मा को निर्बल करते हैं। हम एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट के अनुसार पुरुषार्थ करें, तो हम पाएंगे पहले से हमारा परिवर्तन तेज हो रहा है, जीवन में संतुष्टि आ रही है, जीवन में खुशी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र हो रहा है। करेंगे ऐसा? करेंगे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन करेंगे? जब ये जीवन हमने खुशी से अपनाया है, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आपको बाबा का बच्चा बनने के लिए किसी ने आपके गले में बम नहीं बांधा था, नहीं बनेंगे तो उड़ा ही देंगे आज आपको, किसी ने जबरदस्ती किया था? नहीं, आपने जबरदस्ती किया था, मैं तो चलूंगा ही बाबा के घर में, जाऊंगी ही जाऊंगा ही। जमाने ने खूब रोका, माता पिता ने रोका, भाई बंधु ने रोका, हम सबसे लड़ झगड़ करके बाबा के बच्चे बने, हम बाबा के बिना नहीं रह सकते। तो जब हमने ये जीवन इतनी खुशी से अपनाया है, तो पुरुषार्थ के लिए पीछे क्यों हटते हैं? लौकिकता से समय निकाल करके, देह और देह की दुनिया से, पुरानी दुनिया से, बुद्धि को अब थोड़ा समेट करके पुरुषार्थ करें। यही जीवन का सार है, यही हमारी सदगति का सार है। ओम शांति।